भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में। और आज से हम नया प्रसंग प्रारंभ कर रहे हैं। मेरे ख्याल से पिछले एक वर्ष जो हमने प्रसंग लिया ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार, दशम स्कंद का 23वां अध्याय, और भगवान ये जो ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार किए इसका संबंध अगले अध्याय या अगले प्रसंग से भी था। और वो अगला अध्याय अगला प्रसंग गोवर्धन लीला। तो गोवर्धन लीला और ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार, इन दोनों में बहुत गहरा संबंध जो कि भगवान ने प्रस्थापित किया। और इन दोनों के द्वारा भगवान अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं हमें दी। तो हमने विस्तार से ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार ये प्रसंग समझने की कोशिश की। अलग अलग आचार्यों की टीका, श्रील प्रभुपाद ने जो अपने प्रवचनों में उनके विषय में कहा उस प्रसंग के विषय में, क्योंकि वो तात्पर्य तो नहीं लिख पाए, तो ये सब का समन्वय था। और हम आशा करते हैं कि हम सब मिलकर जो ये 8 शिक्षाएं हमने समझी हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ये सारी जो शिक्षाएं हैं भगवान ने अपनी लीला के द्वारा हमको दी, हम केवल सुनकर भूल जाएं इसके लिए नहीं दी, या केवल सुनकर आनंद ले लें उस समय उसके लिए नहीं दी। हम उसे सुनकर अपने जीवन में उतारें इसलिए भगवान ने ये लीलाएं की हैं। बहुत प्रयोजन भगवान का होता है जब भगवान अपनी लीलाएं करते हैं, और उनमें से मुख्य प्रयोजन जो भगवान अपनी लीलाएं करते हैं इस भौतिक संसार में, उसका यह होता है कि हम भगवान की उन लीलाओं के पीछे जो छिपा रहस्य है, शिक्षामृत है, वो हम ग्रहण करें, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका शीर्षक हमने दिया है गोवर्धन लेक्चर सीरीज, अ हिल दैट थ्रिल्स। गोवर्धन लीला से शिक्षाएं। अब हम प्रारंभ तो कर रहे हैं, कार्तिक का महीना भी शुरू होने वाला है। आशा करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम गोवर्धन लीला की शिक्षाएं समझ पाएं, और उससे भी जल्दी हम अपने जीवन में उतारें इन शिक्षाओं को, यही हमारा प्रयास रहेगा। तो हालांकि हम चर्चा प्रारंभ करने वाले हैं दशम स्कंद के 24वें अध्याय से, परंतु हम श्लोक आज जो ले रहे हैं वो 21वें अध्याय का श्लोक ले रहे हैं, जहां गोपियों ने भगवान की बांसुरी का गुणगान किया। और भगवान की बांसुरी का गुणगान करते समय गोपियों ने ये सुंदर श्लोक गोवर्धन के गुणगान में कहा है। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, और ये श्लोक यदि हम नहीं गाएं तो गोवर्धन लीला संपूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि ये गोवर्धन का गुणगान किया है भगवान की जो गोपांगनाएं हैं, जो कि सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं भगवान की उन्होंने, और जो भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं वो जो प्रार्थना अर्पित करते हैं जब हम उनको दोहराते हैं तो अवश्य ही भगवान उन प्रार्थनाओं को स्वीकार करेंगे। तो इसलिए इसका अनुवाद बहुत ही सुंदर है इस श्लोक का गोवर्धन के गुणगान हेतु। तो हम अनुरोध करेंगे कि बहुत श्रद्धा से और भावना से इस श्लोक का उच्चारण मेरे पीछे आप लोग कीजिए। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10वां अध्याय 21 श्लोक क्रमांक 18। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूलै हन्ताय मद्रिरबला हरिदा हन्त ओह अयम यह अद्रि पर्वत अबला हे सखियों हरिदास वर्य भगवान के सेवकों में सर्वश्रेष्ठ यत चूंकि राम कृष्ण चरण कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों के स्पर्श स्पर्श से प्रमोद हर्षित मानम आदर तनोति प्रदान करता है सह साथ गो गणयो गौवे बछड़े तथा ग्वाल बाल के तयो उन दोनों अर्थात कृष्ण बलराम यत क्योंकि पानीय पेय जल के साथ सूयवस अत्यंत मुलायम घास कंदर गुफाएं कंद मूलय तथा खाद्य कंदों से। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। यह गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। सखियों यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गौवों बछड़ों तथा ग्वाल बालों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं पीने का पानी अति मुलायम घास गुफाएं फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तात्पर्य उपर्युक्त उदाहरण श्रील प्रभुपाद कृत चैतन्य चरितामृत से लिया गया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार से की है। पानीय गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है, जिसे कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव और मुख धोया करते थे। गोवर्धन पर्वत शहद आम का रस तथा पीलू का रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता था। सूयवस दुर्वा अर्थात दुर्व घास को बतलाता था, जिससे अर्घ्य और धार्मिक भेंट दी जाती है। गोवर्धन पर्वत में घास भी होती थी जो सुगंधित मुलायम तथा गौओं की वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह यह घास आध्यात्मिक पशुओं को खिलाने के काम आती। कंदर गुफाओं का सूचक है जहां कृष्ण बलराम तथा उनके संगी खेलते बैठते और लेटते थे। ये गुफाएं तब आनंद देती हैं जब या तो बहुत गर्मी हो या सर्दी हो या फिर वर्षा हो रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने के मुलायम कंद, शरीर सजाने के रत्न, बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर, चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान गोवर्धन करता था। जय श्री गिरिराज गोवर्धन की। ओम। इस संपूर्ण श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण हम साधकों के लिए दो शब्द हैं। गोपियों ने गोवर्धन के गुणगान में इस श्लोक में कहा, हरिदास वर्य। अब वर्य का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, और हरिदास वर्य का अर्थ हुआ कि भगवान श्री हरि के दासों में सर्वश्रेष्ठ। भगवान श्री कृष्ण के सेवकों में सर्वश्रेष्ठ। अब देखिए कौन बोल रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण जानना क्या है हमें कि कौन बोल रहा है ये, कि गोवर्धन भगवान श्री हरि के सेवकों में सर्वश्रेष्ठ है। ये भगवान के द्वारा निर्धारित सर्वश्रेष्ठ भक्त बोल रहे हैं। तो जितने रस हैं, जिन रसों में भगवान की सेवा ब्रजवासी करते हैं, उसमें सर्वोच्च रस में स्थित हैं ये गोपियां, माधुरी रस। और सर्वोच्च रस में स्थित ये सर्वोच्च श्रेणी के भगवान के भक्त सेविकाएं ये बोल रही हैं। कोई हमारे तरह स्ट्रगलिंग साधक नहीं है ये लोग, कि जो अभी हमारे सोलह माला मन को नियंत्रण करने में, वैष्णव के साथ आदान प्रदान करने में तकलीफें हो रही हैं, तो हम यदि बोलें तो कोई बोल भी सकता है कि हाँ भाई सर्वश्रेष्ठ तो है ही, हमसे तो है ही खैर सर्व, बहुत ज्यादा है सर्वश्रेष्ठ। परंतु गोपियां बोल रही हैं तो सीखने योग्य है, क्योंकि आज हम गोवर्धन लीला के प्रसंग को प्रारंभ करते हुए जो मुद्दा लेने वाले हैं वो मुद्दा यही है कि हम कैसे दूसरे भक्तों को सर्वश्रेष्ठ माने हमसे। तो जैसे गोपियां गोवर्धन पर्वत को सर्वश्रेष्ठ मान रही हैं, ये है वैकुंठ भाव, ये है ब्रज भाव। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे भगवान ने ये जो गोवर्धन लीला की, अलग अलग आचार्यों ने टीका दी है, और ये गोवर्धन लीला भगवान की एक ऐसी लीला है जिसमें भगवान इतनी शिक्षाएं दे रहे हैं अपनी एक लीला के द्वारा। और ये एक लीला है जिसमें भगवान लीला करते रहे सात दिन सात रात। हालांकि सुखदेव गोस्वामी वो इतने विस्तार से सात दिन और सात रात का वर्णन परीक्षित महाराज को नहीं कर पाए, क्योंकि परीक्षित महाराज के पास जीने के लिए ही सात दिन सात रात थे। तो जब तक गोवर्धन लीला तक सुखदेव गोस्वामी पहुंचे थे वर्णन करते हुए दशम स्कंद में, तब तक 4 दिन बीत चुके थे पहले परीक्षित महाराज के। इसलिए जो हमारे बाकी वैष्णव आचार्य हैं जैसे कवि कर्णपुर इत्यादि, उन्होंने बहुत विस्तार से भगवान ने 7 दिन और 7 रात किया क्या। जब पहली या दूसरी दफा मैंने गोवर्धन लीला के विषय में सुना, हाँ बचपन में इतना सुना था कि भगवान ने एक पर्वत उठाया था, इतना सुना था भजनों में, यहां वहां गोवर्धनधारी कृष्ण उनका नाम हमने भजनों में गाया भी था, परंतु 7 दिन तक उठाए रखा था ये नहीं सुना था। यहां पर उपस्थित भक्तों से मैं पूछना चाहूंगा, कितनों ने सुना था इस्कॉन में आने से पहले कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक उठाए रखा था? केवल 2-3 हाथ ऊपर उठे हैं। तो बहुत कम हम जानते थे कि भगवान ने 7 दिन तक उठाए रखा था। तो मेरा प्रश्न था, जो हमारे शिक्षा गुरु उनसे मैंने प्रश्न पूछा था कि आप लोग कहते हो इस्कॉन में कि भगवान ने 7 दिन 7 रात भगवान ये पर्वत को उठा के रखा, किया क्या? हमारा स्वाभाविक प्रश्न कलयुग का प्रश्न क्या होता है, कलयुगी बुद्धि, कलयुगी बुद्धि, कलयुगी तर्क वितर्क क्या होता है, किया क्या 7 दिन? क्योंकि मैं बताता हूं कि ये प्रश्न के पीछे पार्श्वभूमि क्या थी, बैकग्राउंड क्या था इस प्रश्न के पीछे, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में था और जो भी ओलंपिक्स इत्यादि वगैरह में वेट लिफ्टिंग मैंने देखा था, तो जो वेट लिफ्टर्स होते हैं वो कितना भी हल्का सा हल्का वेट हो चाहे भारी से भारी वेट हो, कितने समय तक उठाकर रखते हो? 5-10 सेकंड और फिर फेंक देते नीचे। तो कलयुगी बुद्धि ये है कि वो बुद्धि को लेते हुए मैंने इतना बड़ा पर्वत उठाया, वो भी छोटी सी उंगली, बाएं हाथ की छोटी सी उंगली, 7 दिन तक उठाए, किया क्या? अब देखो, हम लोग ने ये ओलंपिक्स में देखा, ये वेट लिफ्टर जो उठाते हैं, मान लो कि कोई वेट लिफ्टर ने वो वेट उठाया 7 दिन तक ऊपर ही रखा है, सर ऑडियंस बोर हो जाएंगे, बोला बस हो गया फेंक नीचे। तो ये कलयुगी बुद्धि है, क्योंकि हमें हमको कुछ ज्ञान ही नहीं है कि भगवान आध्यात्मिक संसार में, और जब भगवान अपना आध्यात्मिक संसार यहां लाते हैं, क्योंकि गोवर्धन है क्या, गोवर्धन को इतना महत्व क्यों दिया गया है? क्योंकि गोवर्धन साक्षात भगवान के हृदय से पैदा हुए हैं। गोलोक वृंदावन में ये कथा है कि गोलोक वृंदावन में भगवान का हृदय जब राधा रानी के प्रेम में द्रवित हुआ, व्हेन कृष्णाज हार्ट वंस मेल्टेड इन द लव ऑफ राधा रानी, इट ब्रॉट अबाउट द मैनिफेस्टेशन ऑफ गोवर्धन। जैसे कि ब्रह्मा जी जो हमारे संप्रदाय के फाउंडर आचार्य हैं, जो कि एक गुण अवतार हैं, और इस भौतिक संसार का जो सर्वश्रेष्ठ लोक है सत्य लोक के वो स्वामी हैं। तो ब्रह्मा जी की पैदाइश कहां से? भगवान के नाभि से, और वो भी भगवान विष्णु के नाभि से। तब हम इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि कोई भगवान के नाभि से उत्पन्न हुआ है और एक कोई भगवान के हृदय से उत्पन्न हुआ है ना, दोनों में, दोनों की क्वालिटी में बहुत अंतर है यहां पर। तो इसलिए जब भगवान राधा रानी से कहें कि भौतिक संसार में जाना है हमें लीला करने के लिए, क्यों? क्योंकि ये बद्ध जीव केवल मेरे अनुयायी भेजने से नहीं ऊपर आ रहे, केवल मेरे शास्त्र ग्रंथ भेजने से नहीं आ रहे, इसलिए मुझे हम सबको नीचे जाना होगा और साक्षात वहां पर अपनी लीलाएं कर कर तीर्थ स्थान पैदा कर कर उनको आकर्षित कर कर बुलाना हो। तो जब ये प्रोग्राम सुनाया भगवान ने राधा रानी को कि भाई अटैची पैक करो, नीचे चलना है, तो राधा रानी ने एक शर्त रखी, कंडीशन। और राधा रानी की शर्त ये थी कि एक ही शर्त पर मैं जाऊंगी, और वो शर्त यह है कि गोवर्धन साथ ये आने चाहिए। देखो राधा रानी की शर्त थी। यहां पर हम गोपियों के द्वारा ये श्लोक जो कहा गया ये चर्चा कर रहे हैं, यहां पर स्वयं साक्षात राधा रानी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि अब देखिए, कोई ये भगवान ये बोल सकता, अरे मैं जा रहा हूं बहुत नहीं है क्या? राधा रानी ने कहा नहीं। राधा रानी के कहने का आशय क्या था? नहीं, आप जा रहे हो, मैं आपके साथ जा रही हूं, ये भी केवल ठीक नहीं मेरे लिए, गोवर्धन भी साथ में होने चाहिए। तो इसे समझ में कोई अंदाजा थोड़ा हमें अभी आ रहा होगा कि कितना महत्व है श्री गिरिराज गोवर्धन का। तो भगवान ने ये पूरी लीला जो है, इस पूरी लीला के हम अलग अलग छोटे बड़े मुद्दों पर गौर करें तो भगवान ने रची ये लीला। जय श्री राधा मदन गोपाल जी की। तो ये लीला पूरी भगवान द्वारा रची गई। आचार्यों ने इस लीला को अन्य जो दैत्यों का वध भगवान ने किया, राक्षसों का वध भगवान ने किया, असुरों का वध भगवान ने किया, उनकी तुलना में गोवर्धन लीला ये एक ऐसी लीला भगवान ने की जिसके अंदर सब कुछ, पूरा स्क्रिप्ट, डायरेक्शन, अभिनय, सब कुछ भगवान के निर्देशन में हो रहा था। बाकी जो असुर आए वृंदावन में वो सब कंस द्वारा भेजे गए, तो वो आए तो भगवान ने उनका वध किया और लीला बन गई। जैसे पूतना, भगवान ने कोई रचना नहीं की कि पूतना अब मैं 6 दिन का हो गया, अभी टाइम हो गया पूतना का आने का, पूतने को आना चाहिए, क्योंकि अभी भागवत में नेक्स्ट प्रसंग वही है पूतना वध का। नहीं, भगवान का उसमें एक दृष्टिकोण से उस लीला को रचने का कोई डायरेक्ट हाथ नहीं दिख रहा था। कंस ने पूतना को भेजा, कंस ने तृणावर्त, अघासुर, ये सारे राक्षसों को भेजा और लीला हुई। परंतु गोवर्धन लीला ये एक ऐसी लीला है जहां देवराज इंद्र वो अपनी अमरावती में अप्सराओं के साथ सोमरस पीते हुए अपने पार्टियों में मग्न थे। अमरावती ये नहीं, बहुतों को लग रहा होगा, एक बार एक प्रवचन में देवराज इंद्र की राजधानी को अमरावती कहा गया तो ऑडियंस में एक व्यक्ति बहुत प्रसन्न हो रहे थे और बाद में आके बोले ये वही है, मैं भी अमरावती से हूं ऐसे भी। तो अब देखिए, देवराज इंद्र वो अमरावती में सब कुछ ठीक चल रहा है, अब वो टाइम आ रहा है इंद्रयाग का और सारे ब्रजवासी और भी बहुत से, केवल ब्रजवासी इंद्रयाग नहीं किया करते थे, बहुत से अलग अलग प्रांत के जो वैश्य वो भी इंद्रयाग किया करते थे उस समय। वो जैसे है ना दुर्गा पूजा चल रही है अभी नवरात्र, तो भारत में हर जगह पर, बंगाल में तो सबसे ज्यादा, यहां पर भी चल रही है। तो वैसे इंद्रयाग सब जगह पर किया करते थे, परंतु क्योंकि ब्रजमंडल में अधिकांश सब वैश्य, तो इसलिए ज्यादा प्राधान्य यहां के इंद्रयाग को था। तो इंद्रयाग अपने बस रेगुलर रूटीन में, वो तो प्रतीक्षा में थे कि भाई अब मेरा यज्ञ ये लोग प्रारंभ करने वाले हैं, सारी आहुतियां होने वाली हैं, भोग वगैरह मिलने वाला है, तो सब कुछ सुखपूर्वक रूटीन वाइज चल रहा था, रूटीन वाइज सब कुछ चल रहा था। अचानक भगवान ने, आज की भाषा में अगर हम बोले काड़ी लीला, भगवान ने कुछ ऐसा किया कि इंद्र कुपितात, देवराज इंद्र को कुपित किया, जानबूझकर चिढ़ा चिढ़ाकर। हम उसकी चर्चा करेंगे, एक एक श्लोक नंद महाराज से जो प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान, ऐसे दिखा दिखा के चिढ़ा रहे हैं इंद्र को, दिखा दिखा के चिढ़ाते हैं। जैसे कई लोग होते हैं ना, दूसरों को यदि उकसाना है, भड़काना है, चिढ़ाना है, तो ऐसे दिखा दिखा के, बोल बोल के, वैसे भगवान क्यों, ताकि वो संवर्तक बादल को बुलाकर बाढ़ और विध्वंस प्रलय लाए यहां पर, क्यों, ताकि मैं गोवर्धन उठा सकूं। और एक एक कनेक्टेड है कि इंद्र को कुपित करना है ताकि वो संवर्तक बादल, और संवर्तक बादल वो बाढ़ आएगी प्रलय, उसके वजह से फिर मैं गोवर्धन उठा पाऊंगा, उसके गोवर्धन उठाने के पीछे फिर 7 दिन 7 रात जितने सारे ब्रज के निवासी हैं, सारे रसों में जो है मुझे एक साथ सबके साथ लीला करनी, बहुत हो गया ये, अलग अलग टाइम पे, कभी ग्वाल बालों के साथ अलग, कभी गोपियों के साथ अलग, कभी नंद महाराज के साथ अलग, नहीं मुझे सब एक साथ चाहिए, ऑल अंडर वन रूफ, नॉन स्टॉप, निरंतर फेस्टिवल चाहिए। कृष्णा इज द सुप्रीम ऑटोक्रैट, वट एवर ही डिजायर्स हैज टू हैपन, उनकी इच्छा, गोविंद इच्छा, जैसे प्रभुपाद बोलते थे। तो बहुत से कारण, भगवान ने बहुत से कारणों को एक साथ लिया और बहुत से चीजों को एक साथ सिद्ध किया, एक गोवर्धन लीला। इसलिए भगवान ने इसको जानबूझकर, नंद महाराज को प्रश्न पूछ पूछ कर, रोक कर, इंद्रयाग को रोक कर, प्रश्न पूछ कर, गुस्सा दिलाकर इंद्र को, और फिर ये सब कुछ डायरेक्टली भगवान के डायरेक्शन में ही लीला हुई। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण लीला है अन्य लीलाओं की तुलना में। तो हम यदि सबसे पहले गोवर्धन लीला के 8 कारण देखें, तो सबसे पहला कारण, केवल ऐसा नहीं कि भगवान को देवराज इंद्र को कुपित करना था या चिढ़ाना था। कभी होता ना, कभी कई बार हम लोग बेवजह किसी को चिढ़ाते रहते हैं, ऐसे ही कोई कारण नहीं, कॉजलेस, बिना कारण, कोई बच्चा खेल रहा है उसको चिमटा मार दिया, मजा आ रहा, रो अब। भगवान बेवजह इंद्र को क्रुद्ध नहीं करना चाह रहे थे। महत्वपूर्ण कारण, सबसे पहला कारण गोवर्धन लीला का, देवराज इंद्र को जो अभिमान हो गया था, उस अभिमान को कम करने के लिए या दूर करने के लिए हम वो भजन में गाते हैं ना, एक दिन मन इंद्र को मारियो, नख ऊपर गोवर्धन धार्यो, नाम पढ़ियो गिरिधारी राधे श्याम श्याम श्याम। तो नाम उनको पड़ा गिरिधारी गोवर्धनधारी, और उसके साथ साथ उन्होंने किया क्या, एक दिन इंद्र देवराज इंद्र का अभिमान चूर चूर किया। जो देवराज इंद्र गोवर्धन को अपने बिजली से, देवराज इंद्र का हथियार क्या है, वो हाथ में बिजली लेके चलते हैं, ये हथियार है उनका, थंडरबोल्ट। देखिए क्या मतलब, उनका पद देखिए आप, उनके हथियार देखिए, उनका वाहन ऐरावत जो कि समुद्र मंथन से बाहर आए, ऐरावत वो उनका वाहन, देवराज इंद्र का वो जो बिजली जिससे वो गोवर्धन को चूर चूर करना चाहते थे। बिजली जो है वो किसी भी वस्तु को चूर चूर कर सकती है। अरे थोड़ा सा करंट हमको लग जाता है तो हम फिर कितना चौकन्ना हो जाते हैं, सोचिए एक बिजली के अंदर कितना वोल्ट्स होगा। तो वो हाथ में लेके इंद्र चूर चूर करना चाहते थे गोवर्धन पर्वत को, परंतु भगवान ने पर्वत से भी ऊंचा, गोवर्धन पर्वत से भी बड़ा जो अभिमान देवराज इंद्र का था, उस अभिमान को भगवान ने चूर चूर किया बिना किसी अस्त्र शस्त्र के, बिना किसी बिजली के। और वो बहुत ही रिफाइंड तरीके से भगवान ने किया। तो भी हम सीखेंगे कि भगवान कैसे रिफाइंड तरीके से अपने भक्तों का अभिमान चूर चूर करते हैं कि पता भी नहीं लगता उसको, बाद में पता लगता, अरे चला गया अभिमान। इसलिए चक्रवर्ती पाद वो कहते हैं कि भगवान ने जब बाकी असुरों का वध किया, या हम ये कहें कि भगवान ने जब बाकी असुरों का उद्धार किया, तो भगवान श्याम सुंदर के अंदर जो वासुदेव कृष्ण का रूप था, तो वो वासुदेव कृष्ण ने इन सब का संहार किया। परंतु जब भी भगवान अपने भक्तों का अहंकार दूर करना या अभिमान दूर करना चाहते थे, तो वो स्वयं श्याम सुंदर कृष्ण किए। When it came to killing of the demons, Vasudev Krishna was delegated for that. But for crushing the pride, Krishna personally does that. श्याम सुंदर कृष्णा पर्सनली ड्रेस दैट। तब ये नहीं समझना चाहिए कि ठीक है यदि मुझे श्याम सुंदर कृष्ण का संग चाहिए तो मैं अभिमानी बनूं, तब मुझे श्याम सुंदर कृष्ण का संग मिलेगा, नहीं, ये शिक्षा नहीं लेनी हमको इसके द्वारा। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहले हम देख लें कि आठ कारण कौन कौन से हैं। ये सर्वप्रथम कारण गोवर्धन लीला करने का। दूसरा कारण, भगवान गोवर्धन पर्वत की महिमा हम सबको दर्शाना चाहते थे कि ये मत समझो कि ये केवल एक पर्वत है किसी और पर्वत के समान, सुमेरु हिमालय इत्यादि के समान, नहीं, गोवर्धन पर्वत एक पर्वत नहीं है, मैं हूं साक्षात भगवान, बताए मुझ में और गोवर्धन में कोई अंतर नहीं। तो ये दूसरा कारण। तीसरा कारण, भगवान हमारे वैष्णव कैलेंडर में एक और फेस्टिवल इंक्लूड करना चाहते थे, है कि नहीं, जैसे पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, वैसे कृष्ण भक्तों को कृष्ण भक्ति करने का बहाना चाहिए। सपोज टू बी लाइक दैट। तो गोवर्धन पूजा का उद्घाटन भगवान करना चाहते थे। चौथा कारण, ब्रजवासियों के अंदर जो अटूट श्रद्धा भगवान के प्रति थी, भगवान ने ब्रजवासियों की वो अटूट श्रद्धा हम तक पहुंचाने के लिए, कि केवल भगवान तो जानते ही थे कि उनके अंदर कितनी अटूट श्रद्धा है, परंतु हम तक पहुंचाने के लिए, हमें सिखाने के लिए कि भगवान के अंदर अटूट श्रद्धा हम कैसे जागृत करें, ब्रजवासियों के पदचिन्हों पर चलते हुए, तो गोवर्धन लीला के द्वारा भगवान ने अलग अलग जो प्रसंग के अलग अलग स्तर हैं उसमें ब्रजवासियों की अटूट श्रद्धा वो प्रदर्शित कर हम सबको सिखाए। ये वो सिखाना चाहते थे, इसलिए गोवर्धन लीला उन्होंने की। पांचवा कारण, ब्रज के सभी निवासियों के साथ निरंतर 7 दिन 7 रात रसास्वादन करने हेतु। देखो, भगवान जो भी कुछ करते हैं बहुत ही रोमांचक तरीके से करते हैं। इट्स नेवर प्लेन वेनिला, एज इट सेड। एज फार एज कृष्णा इज कंसर्न, इट्स नेवर प्लेन वेनिला, इट्स ऑलवेज आइदर बटरस्कॉच और स्ट्रॉबेरी। तो भगवान, अब देखिए कि कोई ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि भाई, अगर 7 दिन 7 रात आपको ब्रजवासियों के साथ निरंतर रसास्वादन करना था तो एक पंडाल लगा लेते। पंडाल लगाकर 7 दिन 7 रात वहां पर हो जाता कथा कीर्तन सब कुछ होता। ये इतना बड़ा गोवर्धन उठाना और वो इंद्र को कुपित करना, इतनी बाढ़ और ये सब, इतना सब कुछ सीन क्रिएट करने की क्या जरूरत थी। तो भगवान जानते थे कि कलयुग के जो लोग हैं वो सिनेमा से बहुत आकर्षित हैं। तो सिनेमा में आप देखो कि हीरो हीरोइन को मिलना है, लेकिन वो एकदम सिंपल तरीके से नहीं होता है। वो किसी और जगह पर, ये हीरो किसी और जगह पर, और वहां पर गुंडे उसके पीछे, यहां पर विलन इसके पीछे, और बीच में बाढ़, बारिश, ये वो, ट्रैफिक जैम, सब कुछ। और जो दर्शक हैं वो, अरे बारिश को भी अभी आना था, ट्रैफिक जैम भी अभी होना था। कई बार तो दर्शक बोल दे, अरे पिक्चर खत्म हो रही, जल्दी मिलो। तो वो एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं ना ये लोग, तब जाकर उसमें उनको वो जो भी कुछ देखते हैं वो यादगार बनता है। क्या बनता है? यादगार। तो भगवान ये 7 दिन और 7 रात अपने सभी ब्रजवासियों के साथ एक यादगार पिकनिक मनाना चाहते थे, यादगार रिट्रीट। जैसे हम लोग मंथन रिट्रीट के लिए जाते हैं, है ना, तो मंथन रिट्रीट यादगार क्यों रहता है? क्योंकि यहां पर नहीं होता सबसे पहले। अगर वो यहां पर होता है तो यहां पर तो हजारों कार्यक्रम होते, तो फिर हम लोग याद करते, अरे वो मंथन रिट्रीट याद है, वो गौरांग प्रभु आए थे और हम लोग वो कुलचा खाए थे, वो तंदूरी कुलचा खाए थे। तो कई बार लेक्चर इतना याद नहीं रहता, बाकी सारी चीजें अच्छी याद रहती हैं, पूरा मेन्यू क्या था। तो इसलिए भगवान इस पूरे समागम को, कौन से समागम को? ब्रजवासियों के समागम को यादगार बनाना चाहते थे हमारे लिए। तो ये पांचवा कारण भगवान ने गोवर्धन उठाया, गोवर्धन लीला की। छठा कारण, गोवर्धन लीला देवताओं की पूजा की तुलना में शुद्ध भक्ति की महिमा क्या है? व्हाट आर द ग्लोरीज ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस एज अगेंस्ट डेमिगॉड वर्शिप? तो इंद्र याग क्या था? डेमिगॉड वर्शिप। और जब नंद महाराज नन्हे से भगवान, 7 वर्षीय भगवान के, तो छोटे से भगवान श्री कृष्ण, हालांकि उन्होंने जो फिलॉसफी सुनाई नंद महाराज को, वो कोई 7 वर्षीय बालक नहीं सुना सकता, कर्म मीमांसा। नंद महाराज भी चौकन्ना रह गए कि ये बालक ये कौन सी फिलॉसफी सुना रहा है, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो नंद महाराज ने कहा कि भाई हम ये यज्ञ करते हैं क्योंकि हम वैश्य हैं, कृषि गोरक्षा ये हमारा धर्म है, और कृषि गोरक्षा के लिए हमें चाहिए वर्षा, और वर्षा के अधिष्ठात्रा देव हैं इंद्र, इसलिए हम उनका ये यज्ञ कर रहे हैं। तो भगवान नंद महाराज से कहते हैं कि मैं आश्वासन देता हूं, इतने वर्षों तक आपको कितना सेंटीमीटर रेन मिला होगा इंद्र के द्वारा, कितना सेंटीमीटर रेन मिला होगा मेरे को बताओ। तो नंद महाराज ने सब बताया कि हर साल कितना सेंटीमीटर बारिश होता है ब्रज में इंद्र याग के बाद। तो भगवान कहे ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर बारिश होता है ना, अब इस वर्ष इंद्र याग मत करो और मेजर करना कितना बारिश होगा। मैं आश्वासन देता हूं कि जितने वर्षों तक आप ये कर रहे थे, वो सारे वर्षों का पानी, बारिश का पानी इंद्र द्वारा दिया गया, वो एक तरफ एक पलड़े में रखो, एक टांकी में रखो, और इस वर्ष जो पानी आने वाला है नहीं करने की वजह से, उसको दूसरे पलड़े में रखो, देखो क्वांटिटी किसका ज्यादा होगा, मैं लिख कर देता हूं। और हुआ वही। तो भगवान इसके द्वारा क्या बता रहे थे? भगवान ये बता रहे थे कि जो देवताओं की पूजा करते हैं उनको जो मिलता है उनके द्वारा इतने वर्षों तक, वो एक तरफ रखो आप, और दूसरी तरफ एक क्षण भगवान कृष्ण की भक्ति, देखो किसका पलड़ा भारी है। एक क्षण कृष्ण की शुद्ध भक्ति और कई युग देवताओं की पूजा, भौतिक स्तर पर भी भगवान कह रहे हैं यदि देखा जाए तो फायदा किसमें है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कारण देवताओं की पूजा की तुलना में शुद्ध भक्ति की महिमा दर्शाने हेतु ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण। भगवान ने अपने बाएं हाथ की बाई छोटी उंगली, क्या कहते हैं उसको, द पिंकी, ये अब देखिए हमारे पूरे शरीर में जनरली जो लोग राइट हैंडेड होते हैं, जो लेफ्ट हैंड होता है वो इतना शक्तिशाली नहीं होता, कमजोर माना जाता, उसमें भी ये छोटी सी उंगली सबसे कमजोर उंगली। तो भगवान ने ये सबसे छोटी सी उंगली अपने बाएं हाथ की, लोग बोलते हैं ना बाएं हाथ का खेल, भगवान ने कहा बाएं उंगली का खेल, और वो भी छोटी वाली उंगली, द पिंकी। तो कलयुग के जो तथा कथित ढोंगी भगवान घूमते फिर रहे हैं, अपने आप को भगवान बोलते हुए घूमते फिर रहे हैं, खैर कलयुग की मीडिया ही उनका पर्दाफाश आजकल कर रही है, तो भगवान यहां पर वो गोवर्धन पर्वत को उठाकर, बेंचमार्क जिसको बोलते हैं ना, बेंचमार्क, एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे थे कि जितने भी कलयुग में ढोंगी भगवान आएंगे उनको गोवर्धन छोड़ो, ईंट भी छोड़ो, एक कंकड़ दो कंकड़, लो इसको 7 मिनट तक, 7 दिन भी छोड़ो, 7 मिनट तक इसको बैलेंस करो अपनी छोटी सी उंगली के ऊपर। तो कलयुग के ढोंगी भगवानों का पर्दाफाश करने हेतु भगवान ने ये महानता अपनी इस मधुर लीला के अंदर भगवान ने अपनी भगवत्ता और महानता भी दिखाई। और फिर अंतिम कारण, कलयुग के बद्ध जीवों को सबसे पावन तीर्थ स्थान भगवान को देना था जाते जाते। तो देखिए, सभी तीर्थ स्थानों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान गोवर्धन को कहा गया, और गोवर्धन में राधा कुंड। तो गोवर्धन की परिक्रमा हम लोग कर सकें, गोवर्धन की पूजा, गोवर्धन का दर्शन, गोवर्धन की कृपा, ये सब कुछ हम प्राप्त कर सकें, तो भगवान ने जाते जाते गोवर्धन को स्पर्श किया। गोवर्धन के ऊपर ऐसी ऐसी लीलाएं की हमने तात्पर्य में पढ़ा कि गोवर्धन क्या क्या प्रदान करते हैं। घास भी सुगंधित, तात्पर्य में लिखा गया है, चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि गोवर्धन के ऊपर की घास भी सुगंधित, और ऐसी घास कि गौवें जब वो घास को खाती तो बहुत ही विशेष प्रकार का दूध उत्पादन करती वो। और चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि उस दूध को, कौन से दूध को, जिस दूध का उत्पादन हुआ है गोवर्धन पर उगी हुई घास खाकर, ऐसे उत्पादित दूध को यदि कोई बद्ध जीव पी लेता तो अमर बन जाता। केवल वो दूध। तो कनेक्शन कहां था, घास। और घास की महिमा क्यों, क्योंकि गोवर्धन से उग रही, वो स्पेशलिटी वहां पर सब कुछ। तो मानो ये तात्पर्य में सब कुछ बताया गया है कि रत्न, घास, गुफाएं, कंदरा, सब कुछ। तो मतलब गोवर्धन मानो बिग बाजार, जैसे होता ना बिग बाजार में सब कुछ मिलेगा आपको, वैसे कृष्ण बलराम सभी ब्रजवासियों को जो कुछ चाहिए था उनको सब कुछ गोवर्धन उत्कृष्ट क्वालिटी में प्रोवाइड कर देते थे। सेलफोन नहीं था गोवर्धन के ऊपर, इसलिए हम निवेदन करते हैं कि गोवर्धन लीला में वो सेलफोन की बाधा मत डालिए। मजा किरकिरा हो रहा है। तो हम कलयुगी बद्ध जीवों के लिए ऐसे पावन तीर्थ स्थान को जो भगवान छोड़कर गए, ये भगवान का 8वां कारण भगवान ने गोवर्धन लीला की। तो अब हम लेंगे कारण सबसे पहला। और जैसे हमने चर्चा की कि ये जो 24वां अध्याय दशम स्कंद का, इस 24वें अध्याय का कनेक्शन संबंध है पिछले अध्याय 23वें अध्याय से। क्या है, कृष्णाज रेक्टिफिकेशन फॉर्मूला। तो ये दोनों अध्याय का संबंध इस प्रकार से है, 23वें अध्याय में जो याज्ञिक ब्राह्मण, उनको भूदेव कहा गया है, जब गोपाल वो गए तो हाल ही में मैं राधा गोविंद महाराज का प्रवचन सुन रहा था, उन्होंने गोवर्धन लीला के ऊपर सुंदर प्रवचन दिया, मैं उनका एक प्रवचन सुन रहा था। हाँ, उन्होंने एक और कारण बताया जो शायद हो सकता है कि लौकिक कोई कारण हो, बहुत सुंदर कारण उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि भगवान बांसुरी उठा उठा कर बोर हो गए थे कि क्या हल्का फुल्का बांस कुछ भारी भरकम चाहिए, मैं बड़ा हो रहा हूं, अभी 7 वर्ष का हो गया। तो वो कह रहे थे कि वो बांसुरी उठा उठा कर, इतना हल्का फुल्का बांस का टुकड़ा उठा उठा कर बोर हो गए थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब भाई दूसरों को बताना भी चाहिए कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, 7 वर्ष का मेरे अंदर शक्ति आ रही है, भी मैं केवल इतना हल्का फुल्का बांस उठाने के बस उसके लिए योग्य नहीं, मैं बड़े बड़े पर्वत उठा सकता हूँ, इसलिए उन्होंने पर्वत उठाया। और वो बता रहे थे कि जब भगवान कृष्ण बलराम ने गोप ग्वाल बालों को भेजा कि जाओ ये यज्ञ चल रहा है, इनसे जाकर तुम भात मांगो भात, तो राधा गोविंद महाराज बोल रहे थे कि उन्होंने अपने सखाओं को बोला कि जाकर केवल भात मांगना, चावल। तो बोल रहे थे कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि जाकर केवल चावल मांगना। वो बोले कि ज्यादातर जब कोई किसी को कोई दक्षिणा में देता है खाद्य पदार्थ, तो वो भात खिचड़ी चावल ये सभी देता है, पूड़ी हलवा पराठे कुलचे ये सब नहीं देता है दक्षिणा में, ये महंगी चीजें हैं। तो भगवान जानते थे कि ये है तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, लेकिन हृदय इनका कृपण है। ब्राह्मण का हृदय क्या होना चाहिए कि स्वयं के लिए तो वो भात रखे और दक्षिणा में दे वो पूड़ी हलवा। कृपण क्या होता है, कृपण स्वयं के लिए तो पूड़ी हलवा रखता है और दूसरों को भात खिचड़ी बांटता फिरता है। क्योंकि वो जल्दी पक जाता है, जल्दी बन जाता है, आसान है, ज्यादा क्वांटिटी में भी दे सकते हैं। तो यहां पर भगवान ने सखाओं को भेजा कि जाकर उनसे बात मांगो, क्योंकि वही औकात है उनकी। हालांकि भगवान तो आगे ये भी दिखा रहे थे कि उनकी औकात तुम जाकर समझ जाओगे कि वो भी नहीं है, कि उतनी भी औकात नहीं है उनकी। तो ग्वाल सखा जब गए तो उन्होंने एड्रेस किया याज्ञिक ब्राह्मण को, कैसे एड्रेस किया, हे भूदेव। देखिए कितने आदर सत्कार से वो उनको एड्रेस कर रहे थे कि हे भूदेव, कि ये भूमि के देवता हो आप ब्राह्मण। और जो 24वां अध्याय जहां गोवर्धन लीला प्रारंभ हो रही है, उसमें देवराज इंद्र को नरदेव कहा गया है। तो भगवान देखिए, चाहे कोई भूदेव हो चाहे कोई नरदेव हो, यदि इन दोनों के अंदर अभिमान आ गया तो देवों के देव मैं हूं, भगवान बोल रहे। तुम चाहे भूदेव हो तुम चाहे नरदेव हो, देवों के देव भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए इन दोनों का अभिमान चूर चूर करने के लिए भगवान ये जो दो प्रसंग हुए, याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों का उद्धार और ये गोवर्धन लीला, तो दोनों को रेक्टिफाई किया, दोनों को ठीक किया भगवान ने। और कैसे ठीक किया ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे ठीक किया, कि भूदेव के संदर्भ में भगवान ने वृक्षों का उदाहरण लेकर उनकी तुलना वृक्षों से की। हम वो श्लोक लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जो कि उस अध्याय के पूर्व के अध्याय में भगवान ने वृक्षों को देखकर, वृंदावन के वृक्षों को देखकर वो श्लोक कहा, एतावत जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिशु प्राणैर अर्थैर धिया वाचा। तो ये जो श्लोक आगे हम एक साथ इसको कहेंगे भी गाएंगे, तो भगवान जब वृक्षों को देखकर उनका गुणगान कर रहे हैं, सारे अपने सखाओं को बोल रहे हैं कि देखो ये वृक्ष जो हैं ये उन ब्राह्मणों से ज्यादा दानवीर हैं कि बिना कुछ मांगे ये सबको सब कुछ देते रहते हैं, और ये एक ब्राह्मण है मांगने पर भी नहीं दे रहे। तो भगवान ये जो 23वां अध्याय है इसके पिछले अध्याय में भगवान ने वो श्लोक बोल दिया था। तो भगवान ये बोल रहे थे कि ये वृक्ष बिना मांगे फल फूल छाया सब कुछ दे रहे हैं, और अगले अध्याय में ये यज्ञिक ब्राह्मण इनको तुम मांगने जाओगे तो भी नहीं देंगे, ये ऐसे हैं। तो भगवान ये बता रहे थे कि इनसे तो समाज में ये वृक्ष भले, कि इनसे ज्यादा समाज की सेवा वृक्ष कर रहे हैं। ये लोग केवल ब्राह्मण के नाम पर बोझ हैं धरती पर, ये भगवान बता रहे थे। और यहां पर देवराज इंद्र का अभिमान चूर चूर किया पर्वत को लेकर। तो देखो भगवान बहुत ही रेडिकल तरीके से उनके फॉर्मूलाज होते हैं रेक्टिफाई करने के। क्या रेडिकल तरीका है कि वृक्ष का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर्वत का इस्तेमाल कर रहे हैं अभिमान चूर चूर करने के लिए। जय श्री राधा मदन गोपाल ललिता विशाखा देवी की। तो ये कनेक्शन पिछले अध्याय से 24वें अध्याय का, गोवर्धन लीला का जो अध्याय प्रारंभ हुआ है उसका कनेक्शन। तो ये जो श्लोक जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे थे, बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण श्लोक, एक साथ हम गाएंगे इसे। एतावत् जन्म साफल्यम् देहिनाम इह देहिषु प्राणैरर्थैर्धिया वाचा श्रेयाचरणं सदा। सदा, सदा का अर्थ है, जैसे कि संस्कृत का एक शब्द है कदा, कदा का अर्थ होता है एक बार, एकदा जैसे बोलते हैं ना, एकदा का अर्थ है एक बार, सदा का अर्थ है हर समय। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि हर समय आचरणम, आचरण किसी जीव का हर समय किस प्रकार का होना चाहिए, जैसे कि वृक्षों का आचरण होता है। तो वृक्षों को दिखाते हुए श्लोक भगवान ने कहा कि उनका जन्म सफल है, उन देहधारियों का जन्म सफल है, देहिनाम इह देहिषु, उन देहधारियों का जन्म सफल हुआ, जन्म साफल्यम, जिन्होंने प्राणैर अर्थैर धिया वाचा सब कुछ दे दिया है दूसरों की भलाई के लिए। यदि यहां पर ये जो ट्रांसलेशन है, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी लिविंग बीइंग टू परफॉर्म वेलफेयर एक्टिविटीज फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स विद हिज लाइफ वेल्थ इंटेलिजेंस एंड वर्ड्स, प्राण अर्थ धिया और वाचा, क्या बाकी रह गया है, सब कुछ तो इसमें इंक्लूड हो गया। अरे प्राण ही ले लिए सबसे पहले, तो बाकी क्या रह गया। कोई कहेगा नहीं मेरे प्राण मेरे संपत्ति में है, चलो वो भी निकालो, मेरे प्राण मेरी बुद्धि में है। तो यहां पर भगवान इन वृक्षों को दिखाते हुए याज्ञिक ब्राह्मण की तुलना वृक्षों से की, और गोवर्धन लीला में देवराज इंद्र की तुलना गोवर्धन पर्वत से की। तो भगवान यहां पर तुलनात्मक तरीके से अभिमान का हनन किए इन दोनों का। तो अब हम जो सबसे पहला कारण भगवान गोवर्धन लीला किए देवराज इंद्र का अभिमान चूर चूर करने हेतु, टू क्रश द प्राइड ऑफ किंग इंद्र, और यहां पर हम देखते हैं कि यह है गोविंद कुंड। हम जब गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो गोविंद कुंड एक प्रमुख स्थान आता है परिक्रमा मार्ग पर, और इस गोविंद कुंड पर देवराज इंद्र सुरभि गाय को लेकर, वहां पर आप देखिए सुरभि गाय भी है, सुरभि गाय को लेकर आते हैं और क्षमा याचना, अपनी गलती का एहसास करते हुए भगवान से क्षमा मांगते। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? देवराज इंद्र का ये जो अभिमान, ये तो वो स्लाइड है जहां पर अब अभिमान चूर चूर हो चुका है, नम्र बन चुके हैं, परंतु इसकी शुरुआत कहां से हुई? तो शुरुआत हुई है, हमारे आचार्य अपने टीकाओं में बताए हैं कि देवराज इंद्र के चार प्रकार के अभिमान थे जिनको भगवान ने चूर चूर किया। फोर टाइप्स ऑफ फॉल्स प्राइड। कई बार हमको लगता है कि हाँ अभिमान मेरे अंदर है, एक ही टाइप का होगा शायद। यहां पर हमारे आचार्य छह अनर्थों में से एक अनर्थ निकालकर उसके भी चार टाइप बता रहे हैं। अभी ये जो चार प्रकार जिसकी हम चर्चा करेंगे, हमें ये समझ लेना है कि ये हमारे प्रकार हैं, नहीं तो कई बार हमको लगेगा अरे ऊपर लिखा है देवराज इंद्र के चार प्रकार के अभिमान, उनके हैं ये अभिमान। नहीं, ये सब आचार्य जो ये सब देवराज इंद्र, वो तो एक माध्यम है, वो तो भगवान के भक्त हैं, वो तो माध्यम है, और भगवान देवराज इंद्र को माध्यम बनाकर हमें हमारा एक्सरे दिखा रहे हैं, हमारे फॉल्स ईगो का एक्सरे भगवान दिखा रहे हैं। इसलिए सब लोग चौकन्ना हो जाइए, फासन योर सीट बेल्ट, सिट बैक। तो सबसे पहला अभिमान, गुण अभिमान, देवराज इंद्र का गुण अभिमान बताया गया है। अब देखिए एक श्लोक है जिसके अंदर भगवान की भक्ति जो करता है, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा। इस श्लोक के अंदर क्या कहा गया है कि जब कोई भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति में लगता है तो अपने आप ऑटोमेटिकली उसके अंदर समासते सुरा सर्वैर गुणै। सुरा का अर्थ है ये सुरेंद्रई, ये सारे देवता, तो सारे देवताओं के गुण उस शुद्ध भक्त के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो सोचो कि ऐसे सारे देवताओं के जो राजा हैं उनके अंदर वो कितने गुणवान होंगे, कितने क्वालिफाइड होंगे, क्या क्या गुण इनके अंदर है। जैसे गौरांग प्रभु बता रहे थे कि ये लोग कोई ऐसे देवता नहीं जो 2 BHK में रहते हैं, इनके अंदर के गुण ऐसे हैं कि यदि आप रूप लीजिए तो देवराज इंद्र का जो रूप वो ऐसा है कि उनको कोई बुढ़ापा नहीं होता कभी। ऐसा नहीं कि अभी 30-40 साल हो गए, अभी झुर्रियां निकल रही हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, अप्सरा का नृत्य देखने के लिए उनको कुर्सी पे बैठना पड़ता है क्योंकि बैक पेन हो रहा है। हमारी क्या स्थिति है, हमको हर हर समय कभी ये डॉक्टर के पास, कभी बुखार हो गया, कभी सर्दी, कभी खांसी, कभी ये दुख रहा है, कभी वो दुख रहा है। तो यदि शारीरिक स्वास्थ्य उनका लें, रूप अति सुंदर, देवराज इंद्र अति सुंदर दिखने वाले, शास्त्र में पारंगत, रूप में, ज्ञान में, हर हर प्रकार के जो गुण जिसके पीछे हम लोग इतना लालायित हैं, जैसे राधा गोविंद महाराज अपने एक और प्रवचन में वो कह रहे थे कि जब देवताओं के बीच में झगड़ा होता है, जब देवताओं की गाली गलौज चलती है, तो गालियां किस प्रकार की देते हो, तो यदि एक देवता दूसरे देवता को गाली दे रहा है तो गाली देते हुए वो कहता है, हे मनुष्य, अब देखिए हम लोग हंस रहे हैं, लेकिन अगर वो लोक में किसी को मनुष्य बुलाए तो उसको गुस्सा आता है, हम लोग हंस रहे हैं। जैसे अगर हम यहां का उदाहरण लें, अब यहां पर अगर झगड़ा हुआ दो के बीच में, दो मनुष्यों के बीच में झगड़ा हुआ, तो दो मनुष्यों के बीच में झगड़ा हुआ और वो दूसरे को बोलता है कुत्ते, तो दूसरा हंसेगा नहीं, क्या जोक मारा है, वो सही में भौंकने लगेगा फिर कुत्ते की तरह। जैसे हम एक बार पहले भी बता रहे थे कि एक बार कुत्तों की कॉन्फ्रेंस बिठाई गई, इष्ट गोष्ठी, तो कुत्तों की इष्ट गोष्ठी में चर्चा हुई, वो लोग बहुत गहन मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे और उनका मुद्दा ये था कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमारी कौन सी मौत है जो हमें भी पता नहीं है। तो जो उनके उनके कुत्तों का सरदार था वो पूरी सभा में सबको पूछ रहा था, किसको पता है कि हमारी ये कौन सी मौत है जो हमको भी पता नहीं, बोले नहीं, तो क्यों ये प्रश्न पूछा जा रहा है, क्योंकि ये मनुष्य जब झगड़ा करते हैं तो एक दूसरे को ये बोलते हैं कुत्ते की मौत मारूंगा, तो ये कौन सी मौत है हमें भी पता नहीं, हमारी उनको कैसे पता चल रही है। एयरफोर्स में एक मेरा मित्र था, उसका एक पालतू कुत्ता था, उसको वो जब बिना कारण भौंकता था वो कुत्ता, तो उसको जोर से ही चिल्लाता, कुत्ते की औलाद। अब देखो सुनने में ये कितना ऑफेंसिव लगता है, लेकिन मैंने कहा कि वो गाली थोड़ी, कुत्ते के लिए तो सही है, कुत्ते की औलाद है वो। लेकिन अगर मनुष्य को भी कहे कुत्ते की औलाद, तो वो शुरू हो जाएगा, फिर उसके पूरे बाप दादाओं को ले लेगा वो। इसलिए कहते हैं कि इस कलयुग में यदि आप अपने बाप दादाओं का नाम भूल गए हो तो किसी से झगड़ा कर लो। पूरी लिस्ट दे देंगे वो लोग। तो देवलोक में वहां पर ये गाली है मनुष्य बुलाना। और राधा गोविंद महाराज वो उस प्रवचन में बोल रहे थे कि देवता वो जब इस पृथ्वी पर भी आते हैं तो वो टच नहीं करते, वो हवा में ही रहते हैं। अगर उनको आना भी पड़े इमरजेंसी में, भगवान ने भेजा है जाओ भाई कुछ वहां पर इमरजेंसी काम करना है, तो वो टच नहीं करते, वो देवता दे डोंट टच द सरफेस ऑफ अर्थ। तो राधा गोविंद महाराज बोल रहे थे अगर मान लो देवराज इंद्र अमरावती से गंधर्व लोक जा रहे हैं, तो अगर वो गंधर्व लोक जा रहे हैं और रास्ते में यदि उनको पेशाब करना है तो नीचे नहीं उतरेंगे वो कभी, दे विल नेवर गेट डाउन एट अर्थ की नहीं, यहां के लायक भी नहीं छोड़ते, मतलब ये उसके लायक भी नहीं है वो। तो ये हम पॉइंट्स क्यों बता रहे हैं कि इससे हमको कुछ अंदाजा आ जाएगा कि कितने गुणवान हैं ये। तो सोचो कि ऐसे गुणों को लेते हुए क्यों नहीं उनके अंदर वो गुण अभिमान। अरे इस भौतिक संसार में कोई भिखारी के अंदर भीख मांगने का गुण आ जाए तो वो भी उसमें अभिमान करता है कि मेरे अंदर देखो भीख मांगने का गुण। और हाँ ये सत्य बात है, हमको यदि कोई कटोरा देके भेजे बाहर, हम हो सकता है कि कुछ भी नहीं कमा पाए, हो सकता है वो कटोरा को ही छीन के ले जाए हमारा। तो अंग्रेजी में कहावत है, इवन अ पॉपर इज प्राउड ऑफ हिज पेनी इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। तो पॉइंट ये है कि प्रकृति ने हमारे अंदर दोषों के साथ गुण भी दिए हैं। ऐसा कोई भी इंसान या कोई भी जीव नहीं है जिसके अंदर दोषों के साथ गुण नहीं है, कुछ ना कुछ गुण तो है। जैसे हम कुत्तों के विषय में इतना बोलते हैं, लेकिन कुत्तों के विषय में कहा गया है कि उनका एक बहुत प्रमुख गुण क्या है, वफादारी, लॉयल्टी। तो चाहे आप कोई भी जीव लो, कोई भी जंतु लो या मनुष्य लो, हमारे अंदर कुछ न कुछ गुण हैं और वो एक ट्रैप है। वो गुण होना वो एक ट्रैप है। क्या ट्रैप है? उस गुण को लेकर हम अभिमानी हो जाते हैं। और होता क्या है कि वो गुण जो दूसरा उस गुण को नहीं हासिल किया हुआ है परंतु हमारे पास है, तो हम वो गुण को लेकर उसका झंडा सबको दिखाते हैं। जैसे मान लो साधकों के अंदर यदि हमारे अंदर गुण है कीर्तन करने का, कि हम बहुत अच्छा कीर्तन कर सकते हैं, तो हम उसको ज्यादा उसका झंडा नहीं दिखाते उनके सामने जो हमसे ज्यादा अच्छा कीर्तन करते हैं। लेकिन जो ज्यादा कीर्तन जानते नहीं उनके सामने, अच्छा मैं सुनाता हूं, बैठ बैठ, ये ट्यून ना मैं सुनाता हूं, इस प्रकार से पकड़ते हैं करताल, इस प्रकार से मृदंग, हारमोनियम, मेरे पीछे बोलो ऐसे, उस तो एक अभिमान आना शुरू होता है कि जो गुण मेरे पास है उस व्यक्ति के पास नहीं है। तो वैसे ही जितने सारे गुण हम लोग अर्जित कर कर रखते हैं और फिर हम उस पर अभिमान करना लगते हैं। तो देवराज इंद्र का ये पहला अभिमान, दूसरा अभिमान पद का अभिमान उनका। अब देखिए केवल उनके पास गुण नहीं था, अब इस भौतिक संसार में हम दोनों चाहते हैं, गुण भी होने चाहिए और वो गुण के कारण हमें कुछ पद भी मिलने चाहिए। ये तो फायदा क्या गुण का है ना, कि अगर गुण है लेकिन कुछ पद नहीं मिला उन गुणों के वजह से, कि भाई MBA किया है, ये डिग्री ली है, वो डिग्री ली है, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिल रही, और नौकरी भी मिली है लेकिन वो स्टैंडर्ड की नौकरी नहीं मिल रही, कि जो गुण मेरे अंदर है वो गुणों के स्टैंडर्ड का पद मुझे नहीं मिल रहा। जैसे रामायण में बहुत सुंदर बताया गया है कि हनुमान जी का एक विशेष गुण है और एक बद्ध जीव का विशेष गुण है। बद्ध जीव का विशेष गुण है कि बद्ध जीव हर समय पदयुक्त रहता है, और हनुमान जी के विषय में भी कहा गया है कि वो भी हर समय पदयुक्त रहते हैं, क्योंकि संस्कृत में पद का एक और अर्थ है चरण कमल। तो हनुमान जी हर समय रामचंद्र जी के चरण कमल से युक्त रहते हैं, या रामचंद्र जी के चरण कमल पर युक्त रहते हैं। और बद्ध जीव हर समय पोजिशन, उसको छोड़ना नहीं चाहता, चाहे 5 साल हो जाए 10 साल हो जाए, कुर्सी को छोड़ूंगा नहीं मैं। इसलिए प्रभुपाद अपने एक प्रवचन में कहते थे कि आजकल के जो नेता हैं, प्रभुपाद का हिंदी प्रवचन था ये, बहुत साल पहले मैंने सुना था, तो प्रभुपाद वो हिंदी प्रवचन में कहते, तो ये जो आजकल के नेता हैं, इनको जब तक गोली से नहीं उड़ाया जाए ये कुर्सी खाली नहीं करते। तो पद का अभिमान, अब देखिए हम लोग साधना भक्ति में लगे हुए, हम लोग नए नए इस्कॉन में आते हैं, इस्कॉन में आने के बाद फिर कितने सारे गुण हम अर्जित करते हैं भक्ति की वजह से, प्रभुपाद की कृपा से। पहले तो मुंह से चू भी नहीं निकलता था, अब दो दो घंटा प्रवचन दे रहे। किसकी कृपा है? वो मतलब प्रभुपाद की कृपा है। पहले बाथरूम से बाहर हिम्मत भी नहीं करते थे गाने का, अभी तो सीना ठोक के माइक के ऊपर 100,000 लोग सामने बैठे हैं और हम लोग कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन करना सीख, गाना सीख लिया, बोलना सीख लिया, पकाना सीख लिया, हर प्रकार का। भगवान का श्रृंगार, पहले खुद के श्रृंगार से फुर्सत नहीं होती थी, भगवान का श्रृंगार सीख लिया। कितने सारी चीजें हम इस्कॉन में आने के बाद सीख लेते हैं जो कभी हमने पहले कल्पना भी नहीं की थी। और फिर होता क्या है कि उसके बाद फिर हमको हमारे उन कलाओं के बलबूते पर हमको पद दिया जाता है। जो अथॉरिटीज होते हैं वो पद देते हैं, हाँ चलो भाई तुम अच्छा कुकिंग करते हो, तुम किचन इंचार्ज बन जाओ। हो अच्छा इंचार्ज, हाँ हेड कुक, अच्छा कभी ये नाम हमने सुना भी नहीं था। HOD बनेंगे हम कभी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, किसी के डिपार्टमेंट भी होगा मेरे अंडर। तो हाँ तुम कुकिंग अच्छा जानते हो, तुम HOD। जैसे हमारे इस्कॉन के बहुत से पाश्चात्य देश के मंदिर है, मैं अमेरिका गया था तो वहां पर एक मंदिर में मेरे को इंट्रोड्यूस किया गया, ही इज द हेड कुक ऑफ दिस टेम्पल। पता लगा वो अकेले ही है पूरे डिपार्टमेंट में। और कोई अंडर है ही नहीं। वो अकेले बेचारे ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब वही बनाते, तो उनको HOD भी बना दिया और टेल ऑफ द डिपार्टमेंट भी वही है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी वही है, मिडल ऑफ द डिपार्टमेंट भी वही है। तो पद जब मिल जाता है तो चाहे वो कितना भी छोटे से छोटा पद हो, हमको फिर लगता है कि हाँ उसका अभिमान हमारा हो जाता है। अब सोचो देवराज इंद्र का पद क्या है, ये सारे 33 करोड़ देवता उनके HOD हैं, 33 करोड़ देवताओं के राजा, तो उनका पद कितना ऊंचा। तो क्यों नहीं उनके अंदर ये दूसरे प्रकार का अभिमान, जिसको कहते हैं पद अभिमान, आया होगा। अच्छा ये सब कनेक्टेड है, हमारे आचार्यों ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि गुण के वजह से पद मिलता है, या गुणों के वजह से हम पद की अपेक्षा करते हैं या आकांक्षा रखते हैं। और पद मिल गया परंतु ऐश्वर्य नहीं, तो फायदा क्या? ऐश्वर्य क्या है? सुख सुविधाएं। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि अरे आपने मेरे को ये पोजीशन तो दे दिया लेकिन कुछ फैसिलिटी है क्या? अरे कोई कार दो, मोबाइल दो, कुछ ना कुछ तो फैसिलिटी दो उसके साथ साथ, ऐश्वर्य कुछ तो आना चाहिए। तो इसलिए ये सारे जो अभिमान हैं, ये श्रृंखला में एक के बाद एक हमारे अंदर आते जाते हैं, और विशेष रूप से जब हम भक्ति में लगते हैं तो माया देवी श्रृंखला में ये एक एक अभिमान, इसके लेवल्स हमारे अंदर डालती जाती हैं। सबसे पहला लेवल, इसको कला दो, स्किल, इसको स्किलफुल बनाओ। तो स्किलफुल जब ये बनेगा तो इसको पोजीशन मिलेगा, पोजीशन जब मिलेगा तो फिर ये आकांक्षा करेगा फैसिलिटीज कि अब मुझे पोजीशन मिल गया है, अब मैं इसका एचओडी हूं, अब मैं इसका इंचार्ज हूं, अब मैं डिपार्टमेंटल हेड हूं, अब मेरे को फैसिलिटीज चाहिए, नहीं तो फिर इज्जत का सवाल है। अरे मैं एचओडी और मैं चल के जा रहा हूं, ऐसे कैसे? तो इज्जत का सवाल है। इसलिए ऐश्वर्य अभिमान। तो देवराज इंद्र, उनका ऐश्वर्य, जैसे कि उन्होंने अपने ऐश्वर्य के चलते बहुतों का अपमान कर दिया था कि अपने ऐश्वर्य पर हानि नहीं होनी चाहिए, जैसे उनको ही, उनके ही गुरु बृहस्पति जी, बृहस्पति देवराज इंद्र के गुरु हैं, देवताओं के, पूरे देवताओं के गुरु हैं, और बृहस्पति देवराज इंद्र को मिलने गए अमरावती। अब देखिए, गुरु जा रहे हैं मिलने के लिए, तो उस समय देवराज इंद्र की आरती चल रही थी। हम लोग तो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम कुछ कभी उस स्तर पर पहुंचेंगे कि हम बैठे हैं और लोग हमारी आरती उतार रहे। तो देवराज इंद्र की आरती चल रही थी और उन्होंने देखा कि उनके गुरु प्रवेश किए हैं, तो कुछ समय के लिए जो उनको ऐश्वर्य सब कुछ उनके चारों ओर था, उस ऐश्वर्य को वो छोड़ नहीं पाए अपने गुरु को अटेंड करने के लिए। फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ मोमेंट ही कुंड लीव ऑल द वर्शिप विच ही वॉज रिसीविंग टू गो एंड रिसीव हिज स्पिरिचुअल मास्टर। और वो एक क्षण के निग्लेक्ट के वजह से पूरे जो देवता हैं वो राक्षसों से हार गए आगे युद्ध में, उस एक क्षण के गुरु अपराध के वजह से, एक क्षण के गुरु अपराध के वजह से। और अब ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ कहा था, बस निग्लेक्ट, ही सिंपली फॉर अ मोमेंट निग्लेक्टेड हिज स्पिरिचुअल मास्टर। एंड व्हाट वाज द रीजन फॉर निग्लेक्टिंग हिज स्पिरिचुअल मास्टर? ऐश्वर्य, द वर्शिप विच ही वॉज रिसीविंग, तो उसका अभिमान उसके कारण। और फिर अंतिम अभिमान, अनुयायियों का अभिमान, कि आपके पास गुण है, गुणों के वजह से आपको पद मिलता है, पद के बाद आपको ऐश्वर्य की आकांक्षा होती है, और चाहे कितना भी ऐश्वर्य आ जाए, यदि अनुयायी नहीं, फॉलोअर्स नहीं, तो वो ऐश्वर्य भी किस काम का? वी नीड फॉलोअर्स टू फॉलो अवर ऑपुलेंसेस, टू फॉलो अवर पोजिशंस, टू फॉलो अवर क्वालिटीज। और देवराज इंद्र के जो इमीडिएट फॉलोइंग, तो 33 करोड़ देवता हो गए, सोचो 33 करोड़ नंबर तो वहीं पे आ गया बाय डिफॉल्ट 33 करोड़ तो हो गया। हम लोग, हमारा अगर लिस्ट बनाएं कि मेरे फॉलोअर्स कितने हैं, तो 33 भी नहीं निकलेंगे। हाँ, फेसबुक में हम लोग पता नहीं कितने वो बना लेते हैं कि ये फ्रेंड वो फ्रेंड, और उनको पता भी नहीं कि ये वो आपके फ्रेंड है, आप उनके फ्रेंड है। कई बार तो आजकल ऐसे हैं कि ये वर्चुअल फ्रेंड्स हैं, ऐसा कोई आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता प्लैनेट पे, लेकिन वो आपका फ्रेंड बना हुआ है। क्यों? क्योंकि दिल में तसल्ली देने के लिए। हाँ, ऐसे वेबसाइट्स हैं जो आपको फेसबुक पर वर्चुअल बॉयफ्रेंड और वर्चुअल गर्लफ्रेंड ला कर देंगे, ताकि आप दूसरों को ये डिंगे मार सकें कि देखो मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है, मेरा एक गर्लफ्रेंड भी, ऐसा कोई है नहीं दूसरों को डिंगे मारने के लिए। ये हालत है हमारी यहाँ कलयुग में। और देवराज इंद्र के अनुयायी, पहले तो 33 करोड़ देवता और कितने सारे उनके उपासक। तो ये 4 प्रकार के अभिमान देवराज इंद्र के बताए हैं। तो अब हम ये जो 4 प्रकार के अभिमान और हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के नम्र भक्त, इसकी तुलना में जिनके पास गुण थे, पद था, ऐश्वर्य था और अनुयायी थे, और उन्होंने शुद्ध भक्ति के वजह से उन्होंने क्या दर्शाया। तो गुण अभिमान में सबसे पहले उदाहरण प्रहलाद महाराज का है कि प्रहलाद महाराज के अंदर कौन सा गुण था कि जो लक्ष्मी देवी और ब्रह्मा जी के अंदर भी नहीं था, कि भगवान नरसिंह देव को वो शांत कर सके। अब देखो इतना बड़ा गुण कि भगवान नरसिंह देव को जो शांत कर पाए, और ऐसा नहीं कि भगवान नरसिंह देव कोई ऐसे अवतार थे जो एकदम शांति के प्रिय और शांति रूप में आए थे। उग्र नरसिंह, केवल नरसिंह नहीं, उग्र नरसिंह, उग्र नरसिंह जिनको लक्ष्मी देवी पहचान नहीं पाई। लक्ष्मी देवी ने कह दिया कि मुझे पता नहीं ये मेरे पति हैं कि नहीं, इतना गुस्से में तो मैंने इनको कभी देखा नहीं। तो प्रहलाद महाराज के अंदर उनके कितने सारे गुण बताए गए, लेकिन प्रहलाद महाराज स्वयं कहते हैं कि मैं तो एक राक्षस कुल में पैदा हुआ भगवान, तो कृपा कर आप मुझे प्रलोभित मत करो कि मैं आपसे कुछ वरदान मांगो, मुझसे मेरे सामने कोई वरदान का प्रस्ताव मत रखो, क्योंकि मैं पहले ही राक्षस कुल में पैदा हुआ हूं, तो मैं मेरे अंदर वो प्रवृत्ति होगी। वो अपने आप को एक राक्षस बोल रहे हैं। तो हालांकि प्रहलाद महाराज की जो नम्रता है बहुत ही सुंदर तरीके से सुखदेव गोस्वामी ने 7वें स्कंद में बताई है कि इतने गुणवान होने के बावजूद प्रहलाद महाराज कितने नम्र थे। तो हमको क्या सीखना है कि गुणों का अभिमान हमारे अंदर आएगा, परंतु हम प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों के पदचिन्हों पर चलेंगे तब जाकर उसका विध्वंस होगा। पद अभिमान में उदाहरण है अम्बरीश महाराज, कि वो पूरे पृथ्वी के राजा अम्बरीश महाराज, क्या पद है देखिए, केवल किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर नहीं थे वो, किसी गांव के पंचायत के वो कोई जमींदार या सूबेदार या ये सब कुछ नहीं थे, पूरी पृथ्वी के राजा। और अम्बरीश महाराज के प्रति जो अपराध दुर्वास मुनि ने किया, अम्बरीश महाराज ने दुर्वास मुनि को ये नहीं कहा कि तुम्हें पता है मुझे भगवान विष्णु ने गिफ्ट में क्या दे रखा है, सुदर्शन चक्र। तो सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु ने गिफ्ट के रूप में दिया था अम्बरीश महाराज को कि रखो कभी काम आएगा। तो अम्बरीश महाराज ने अपना पद और ये सब कुछ दुर्वास मुनि को नहीं दिखाया जब दुर्वास मुनि ने अपराध किया। अम्बरीश महाराज दुर्वास मुनि के सामने अपनी गलती माने, और जब दुर्वास मुनि, हम पूरी कथा जानते हैं कि मारने के लिए उतारू हुए, तब वो सुदर्शन अपने आप मारने के लिए गया दुर्वास मुनि को, अम्बरीश महाराज ने उसका आह्वान नहीं किया, अपने आप सुदर्शन दुर्वास मुनि को मारने के लिए पीछे पीछे, और वो 1 साल तक दुर्वास मुनि घूम रहे थे। 1 साल तक अपने आप को बचाने के लिए, उस सुदर्शन से बचाने के लिए 1 साल घूम रहे, यहां वहां ब्रह्मलोक शिवलोक वैकुंठ तक पहुंच गए। और एक साल तक अम्बरीश महाराज वो प्रतीक्षा में है कि अभी तक दुर्वास मुनि ने कुछ खाया नहीं तो मैं कैसे खाऊं। कई बार हमको सर्वर्स को बोलना पड़ता है तुम पहले खा लो भाई, क्योंकि फिर कम कम दोगे तुम, पहले खा लो। तो यहां पर ये एक वर्ष तक पहले तो इतना फास्टिंग किया ही था, और क्योंकि वो पारण का समय आ रहा था इसलिए उन्होंने थोड़ा सा जल ग्रहण कर लिया था और उसके वजह से इतना बवाल हुआ था, और उसके पश्चात एक साल तक वापस फास्टिंग। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति मुझे मारने के लिए सुदर्शन निकाल लिया उसने अभी तक खाया नहीं है। तो हमें सीखना चाहिए अम्बरीश महाराज से। कई बार हमारी स्थिति क्या होती है कि हम अपने ही गुरु बंधु गॉड सिस्टर्स और गॉड ब्रदर के ऊपर सुदर्शन निकालकर उसको खाते खाते मारना चाहते हैं। यहां पर अम्बरीश महाराज की नम्रता देखिए कि बिल्कुल किसी पद या किसी गुण का अभिमान नहीं। ऐश्वर्य अभिमान स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण, और वो कैसे? सुदामा। सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए कब और कहां गए? सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए वृंदावन में नहीं गए, जब वृंदावन में भगवान एक ग्वाल बाल के रूप में थे। सुदामा भगवान से मिलने के लिए गए जब भगवान द्वारकाधीश बन चुके थे, 16,108 पटरानियों के पति द्वारकाधीश, इतने 16,108 महलों के अधिपति, उनसे मिलने के लिए गए। और भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा, और सुदामा वहां पर फटे पुराने चिथड़े पहने हुए और वो पोहा लेकर सूखा हुआ, वो भी पोटली में, कोई पुरानी सी मैली सी पोटली में बांधकर। तो भगवान ने पहले उनके चरण धोए। भगवान ने ऐसे नहीं कि किसी को लगा दिया, भाई थोड़ा तुम धो देना, बाद में मेरे को सीक्रेटली मेरे रूम में पहुंचा देना चरणामृत, नहीं, सबके सामने, अपनी पूरी रानियों के सामने। आप देखिए, ये एक पुरुष के लिए पुरुष अभिमान होता है, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं ना मेल ईगो, कि मेरी बीवी के सामने कभी नहीं, कतई नहीं, मेरी बीवी के सामने नहीं, इज्जत का सवाल है, मर्दू मर्द। कई तो होते हैं वो अपने बीवी को ही सर्व नहीं करते, बीवी के सामने किसी और को क्या सर्व करेंगे, वो भी उसके चरण धोना। तो यहां पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, और वो कौन है? उनके अंदर तो पूरा अभिमान उनके अंदर होना चाहिए, षड ऐश्वर्य पूर्ण है वो। कोई ये छुटपुट दो कौड़ी के ऐश्वर्य नहीं है उनके पास, षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान वो सुदामा के चरण धोकर पी रहे हैं। सुदामा ने जो वो पोहा लाया था छीन कर सब अपने रानियों के सामने खा रहे हैं। तो भगवान अपने इस उदाहरण से दर्शाए कि ऐश्वर्य होने के बावजूद कैसे नम्र रहना। और आखिरी उदाहरण अनुयायी का अभिमान, इसमें है भगवान शिव। तब देखिए, बहुत ही ये एक उदाहरण मेरे को इतना प्रेरणा देता है, शिवजी का उदाहरण। मोहिनी मूर्ति की समुद्र मंथन की लीला हुई, समुद्र मंथन की लीला भगवान शिवजी ने बाद में सुनी, और भगवान शिवजी ने सुना, उनको सबसे ज्यादा उसमें आकर्षित बात क्या लगी कि उनके आराध्य देव भगवान विष्णु एक सुंदर स्त्री के रूप में आए, तो जब उनको वो समाचार मिला कि अरे सब सब जगह खबर फैली हुई थी, अरे तुमने वो विष्णु का नया रूप देखा क्या, मोहिनी मूर्ति? नहीं, अरे अच्छा तुमने नहीं देखा मोहिनी मूर्ति? नहीं नहीं हमने नहीं। अरे इतने सुंदर स्त्री के रूप में भगवान। तो जब शिवजी उनको SMS गया तो भगवान शिवजी वो दौड़े दौड़े गए, और भगवान विष्णु, पूरी लीला हो गई थी, अब भगवान विष्णु मोहिनी मूर्ति से वापस अपने विष्णु रूप में आ चुके थे, अभी नॉर्मल थे भगवान। तो यहां पर शिवजी दौड़े दौड़े गए और शिवजी भगवान विष्णु से कहते हैं कि मैंने सुना आपने बहुत सुंदर एक मोहिनी मूर्ति नामक रूप लिया, मैंने तो आज तक लिस्ट में इनकार्नेशंस के ये देखा नहीं सुना नहीं, ये कौन सा आपका अवतार? तो भगवान विष्णु वो हंसने लगे, और भगवान विष्णु सबसे पहले भगवान शिवजी से पूछते हैं, पार्वती वो जानती हैं कि आप यहां पर क्या देखने आए हो, उनसे NOC लिया है क्या? तो भगवान कहे मैं उसको तो संभाल लूंगा, उसकी चिंता मत करो, उसको मैं संभाल लूंगा, दुर्गा है वो। तो भगवान शिवजी आश्वासन देते नहीं 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 मुझे देखना है, मैं बहुत तत्पर हूं, उतारू। तो कॉशन किया भगवान विष्णु ने, वार्न किया कि भाई वो बहुत ही खतरनाक रूप है अलग दृष्टिकोण से, वो अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा देगा वो रूप, ऐसा रूप है। एक बार राधानाथ महाराज समुद्र मंथन की ये कथा अपने प्रवचन में सुना रहे थे, तो पूरा सुनाया उन्होंने, मोहिनी मूर्ति का पूरा वो विवरण विश्लेषण जो दिया गया है पूरा। तो एक भक्त प्रश्न पूछते हैं कि why can't we have DT of मोहिनी मूर्ति इन ISKCON? तो महाराज बोले यू विल नोर बी इन ISKCON देन। तो जब भगवान ने चौकन्ना किया, वॉर्न किया भगवान शिव जी को, तो अपना रूप मोहिनी मूर्ति का रूप, और भगवान अब देखिए कि उस समय जो उन्होंने मोहिनी मूर्ति का रूप लिया था समुद्र मंथन के पश्चात अमृत को बांटने के लिए, उस रूप में और थोड़ा एडिशंस डाला भगवान ने शिवजी को दिखाने के लिए, क्योंकि भगवान शिवजी को आकर्षित करना इतनी सरल बात नहीं है। कि जिन्होंने कामदेव को अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया था, सोचो अगर हमारे सामने कामदेव आ जाएं, कामदेव कौन है, क्यूपिड पर्सोनिफाइड, तो अगर हमारे सामने कामदेव आ जाए, आने की भी जरूरत नहीं उनको, तो हम तो तीसरी आंख क्या, सारी आंखें खोल खोल कर फाड़ फाड़ कर देखेंगे। यहां पर उन्होंने तीसरी आंख खोली भस्म करने के लिए, ये उनका संयम, ये शिवजी का संयम। तो इसलिए ऐसे संयमी व्यक्ति को थोड़ा डगमगाने के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा फीचर्स डाले, मोहिनी मूर्ति स्पेशल दर्शन शिवजी के लिए। तो शिवजी जैसे ही मोहिनी, और पूरा वो वर्णन किया गया है कि वो केवल वो एक गेंद से खेल रही हैं, और ज्यादा लुभा रही हैं शिवजी को गेंद से खेलते खेलते, और प्रलोभित कर रही हैं, और शिवजी इतना देखते हुए इतना ज्यादा वो प्रभावित हो गए कि वो जाकर मोहिनी मूर्ति को आलिंगन करने के लिए गए, भूल गए शादीशुदा हैं, भूल गए उनके इतने अनुयायी वो सब देख रहे हैं, और वहां से सर्प की तरह फिसल कर मोहिनी मूर्ति निकल जाती है और भागना शुरू करती है, और शिव जी पीछे पीछे भाग रहे हैं, मोहिनी मूर्ति आगे आगे, भगवान शिव जी पीछे पीछे। और मोहिनी मूर्ति कहाँ भागती है, जहां पर जो सबसे सीनियर डिसाइपल्स शिव जी के, उनके सामने से, और ये सब बड़े बड़े त्यागी योगी साधु सब ध्यान में, क्योंकि भाई शिव जी के एकदम सीनियर एसोसिएट्स हैं, तो वो लोग अपने ध्यान में बैठे, उनके सामने से मोहिनी मूर्ति शिव जी। तो पहले तो देखा मोहिनी मूर्ति हुई, वो ध्यान में बैठे, गुरु महाराज आप भी। तो उनके सामने से महाराज अपने एक प्रवचन में बता रहे थे, मोहिनी मूर्ति ऑन पर्पस वॉज रनिंग अमिड्स ऑल दी सीनियर एसोसिएट्स ऑफ लॉर्ड शिवा। वाई? टू ग्लोरिफाई द ह्यूमिलिटी ऑफ लॉर्ड शिवा, फॉर दैट पर्पस। कि इनके सामने पागलों की तरह मोहिनी मूर्ति के पीछे भागते हुए शिवजी, जिन्होंने देखा भी नहीं कि मेरे अनुयायी मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी क्या इमेज रह जाएगी। लोग कितने इमेज कॉन्शियस रहते हैं, और सोचो इतने बड़े भगवान शिव जी, तो वो मोहिनी मूर्ति के पीछे पीछे भाग रहे हैं अपने अनुयायियों के सामने। और इतना ही नहीं, वो भागवत में पूरा रिकॉर्डेड है फॉर ऑल टाइम टू कम, इट्स रिकॉर्डेड इन द पेजेस ऑफ भागवतम। ऐसा नहीं कि भगवान शिव जी सुखदेव गोस्वामी को बाद में बोले वो चैप्टर थोड़ा डिलीट कर देना है, थोड़ा इमेज का सवाल है थे। नहीं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो गुण यहां पर, अब ध्यान से सुनिए, कि भगवान शिव जी अपने अनुयायियों को ये दिखाना चाहते थे कि चाहे मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, कितने भी बड़े पद को मैं हासिल कर लूं, कितना भी गुणवान हो जाऊं, ऐश्वर्यशाली हो जाऊं, परंतु मेरे आराध्य देव भगवान विष्णु के सामने मैं केवल उन्हीं की शक्ति के सामने परास्त हो सकता हूं। और प्रभुपाद लिखते हैं, लॉर्ड शिवा कैन ओनली बी बिवल्डर्ड बाय द पर्सनल योग माया शक्ति ऑफ विष्णु। लॉर्ड शिवा कैन नेवर बी बिवल्डर्ड बाय द बहिरंगा शक्ति महामाया। महामाया इज ऑलवेज अंडर, शी इज दुर्गा हरसेल्फ, ऑलवेज अंडर लॉर्ड शिवा। इफ लॉर्ड शिवा इज बिवल्डर्ड, will only be bewildered by the yoga maya shakti of Lord Krishna. और चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य लीला में भी यह प्रसंग, इसी प्रकार का प्रसंग आता है। वही शिवजी अद्वैताचार्य के रूप में आए, सदाशिव, और अद्वैताचार्य वो योग वशिष्ठ का प्रचार कर रहे थे जानबूझकर। योग वशिष्ठ का प्रचार जानबूझकर इसलिए किया क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हर समय अद्वैताचार्य को अपना सीनियर मानते थे, जो कि अद्वैताचार्य को अच्छा नहीं लगता था कि अरे भाई आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, आप मुझसे सीनियर कैसे हो सकते हो। तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हर समय अद्वैताचार्य को अपना सीनियर मानते थे, तो एक ही तरीका था कि वो चैतन्य महाप्रभु से डांट फटकार सुन सकें, और वो था कि जब वो मायावाद का प्रचार करें। तो इसलिए अद्वैताचार्य ने जानबूझकर मायावाद का प्रचार किया, जब उन्होंने देखा चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए, तो जोर जोर से योग वशिष्ठ से मायावाद का प्रचार। तो चैतन्य महाप्रभु इतना क्रोधित हुए ये सुनकर, और जोर से चिल्लाकर मंच पर चढ़ गए और अपने हाथों से पकड़कर कूटने लगे, अद्वैताचार्य को मारने लगे। तो सीता ठाकुरानी, उन्होंने देखा तो वो आई और वो चैतन्य महाप्रभु को रोकने लगी कि ये अरे मेरे बूढ़े पति हैं, इनको आप इस प्रकार से मार रहे हो, ये व्यक्ति मर जाएगा। और चैतन्य महाप्रभु मायावाद का प्रचार कर रहे हो, ये हिम्मत मेरे सामने, मार रहे हैं मार रहे हैं। और अद्वैताचार्य हरि बोल हरि बोल हरि बोल, अद्वैताचार्य वही मोहिनी मूर्ति, वही शिवजी हैं, वही सदाशिव। तो मोहिनी मूर्ति का प्रसंग याद करते हुए हरि बोल बोल रहे हैं कि जैसे भगवान विष्णु की मोहिनी शक्ति से मैं मोहित हुआ था, उसी प्रकार से यहां पर भी पूरे विश्व के सामने, पूरी सृष्टि के सामने ये अब मैंने दिखा दिया है कि मेरे आराध्य देव जो हैं चैतन्य महाप्रभु, मैं उनके अधीन हूं, मैं कभी उनका सीनियर नहीं हो सकता। तो ये जो दोनों लीलाएं हैं, चैतन्य लीला में अद्वैताचार्य की लीला और ये भागवत में भगवान शिवजी की मोहिनी मूर्ति के साथ लीला, ये दोनों लीलाएं इतनी प्रेरणास्पद है हमारे लिए कि इतने बड़े पद के व्यक्ति, इतने अनुयायियों के सामने वो भगवान का पद ऊंचा रहे, ये दिखाने के लिए उन्होंने अपने इमेज की कदर नहीं की। इसको कहते हैं प्योर डिवोटी। देयरफॉर लॉर्ड शिवा इज वैष्णवानाम यथा शंभु। व्हाई? बिकॉज ही हैज नो reservations, he has no desire for personal name, fame, adoration. That makes him Mahadev. That is the glory of Lord Shiva. तो यहां पर हम देखते हैं कि जो चार प्रकार के अभिमान, और इन चार प्रकार के अभिमान का ठीक विरुद्ध उदाहरण, ऐसे बहुत से उदाहरण है परंतु हमने कुछ उपयुक्त उदाहरण हमारे भागवत से लिए, जिससे हम समझ सकते हैं कि जब हमारे अंदर भी ये एक एक कर अभिमान आने लगे तो हमको किसकी शरण ग्रहण करनी है। यदि गुण अभिमान आए तो हमको प्रहलाद महाराज की शरण ग्रहण करनी है, यदि पद अभिमान आए तो अम्बरीश महाराज की शरण ग्रहण करनी है, ऐश्वर्य अभिमान आए तो कृष्ण सुदामा वो प्रसंग उसको उसकी शरण ग्रहण करनी है, और अनुयायों का अभिमान आए तो हमको भगवान शिव जी की शरण ग्रहण करनी है। हालांकि और भी आज के इस फर्स्ट पॉइंट को लेकर हमारे मुद्दे थे, परंतु ऑलरेडी 11 बजने वाले हैं तो हम यहीं पर कथा को विराम देंगे और इसका भाग दो, गोवर्धन लीला के जो पहले सत्र के पहले पॉइंट का भाग दो, लेक्चर सीरीज का जो फर्स्ट सीरीज है, फर्स्ट सीरीज के फर्स्ट पॉइंट का पार्ट टू, वो हम लेंगे अगले रविवार को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। किसी का कोई एक प्रश्न यदि है तो ले सकते हैं। इनका एक प्रश्न है।
हरे कृष्ण भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर क्लास के लिए। यहाँ पे हमने देखा कि इंद्र के बारे में ये चार प्रकार के अभिमान बताए गए हैं, वो उनके लेवल पे बताए गए, लेकिन अगर हमारे साधना भक्ति में अगर हम देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के पद हमें मिलते हैं, तो उसमें हमें अभिमान आ रहा है या नहीं ये हम कैसे समझे, और हमारा अभिमान चूर चूर हो रहा है ये हम कैसे समझे।
देखिए, यदि हमको कोई पद दिया गया है और आप कह रहे हो हमको जो पद दिया गया है तो हमारे किसी अधिकारी ने दिया होगा, तो जब किसी अधिकृत व्यक्ति ने हमको पद दिया है तो हम उस पद को स्वीकार करने के साथ साथ हम उनको ये एक स्वतंत्रता दें कि जब भी वो देखें हमारे अंदर कि हम उस पद का दुरुपयोग कर रहे हैं अभिमानवश, तो वो हमें ठीक कर सके. सो अलोंग विथ एक्सेप्टिंग द पोस्ट वी शुड गिव द राइट टू अवर अथॉरिटी हु हैज गिवन अस दैट पोस्ट. और ऑटोमेटिकली द अथॉरिटी हैज द राइट, बट वी शुड वेरी ऑब्वियसली गिव द लाइसेंस और द फ्रीडम और द राइट टू अवर अथॉरिटी टू चेक ऑन अस वेन एवर वी गेट कैरिड अवे बाय द प्राइड ऑफ दैट पोजिशन. ये एक तरीका है जानने का कि मैं वहां से पथभ्रष्ट या पद से भ्रष्ट हो रहा हूं कि नहीं. दूसरा तरीका है कि हम जिस पद पर सेवा कर रहे हैं तो जो जो हमारे उस पद से संबंधित हैं, पद की सेवा से, चाहे वो हमारे सीनियर्स हों, चाहे हमारे वो इक्वल्स हों, चाहे वो हमारे सबॉर्डिनेट्स हों, जो जो हमसे संबंधित है, हमसे और हमारे पद से, क्या वो संतुष्ट हैं क्या? यदि वो संतुष्ट हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि हाँ गाड़ी सही पटरी पे. यदि वो संतुष्ट नहीं तब फिर समझना चाहिए कि कहीं पर कुछ गड़बड़ है. तो ये दो तरीके हैं जानने के कि हम उससे प्रभावित हो रहे हैं कि नहीं, और यही दो तरीके हैं ये भी जानने के लिए कि वो संतुष्ट हो रहे हैं कि नहीं हमारी उस सेवा से, उस पद के द्वारा सेवा जो हम कर रहे हैं. और कोई प्रश्न? उस बटन को दबा के रखिए, ग्रीन लाइट जलेगी.
हरे कृष्णा प्रभु जी. ऐसा जैसे आपने बताया कि जो इंद्र भगवान थे वो काफी गुणवान थे और काफी मतलब बहुत ऊंचे पर्सनैलिटी थे, तो उनको ये पता नहीं था कि वो कृष्ण भगवान के साथ जो कर रहे करने वाले हैं, तो वो काफी मतलब वो तो भगवान है. ये जो लीला हुई गोवर्धन की, तो उनको पता नहीं था क्या कि मैं किसके साथ पंगा ले रहा हूँ? उन्होंने क्या श्रीमद भागवत पढ़ा नहीं था कि या मीन्स अभिमान के वजह से था या अज्ञान की वजह से था, या इट वॉज ए डेलिबरेट एक्ट टू गिव द लेसन्स टू नॉर्मल पब्लिक?
नहीं, ये भी कारण है कि भगवान अपने ही पार्षदों को इस्तेमाल करते हैं हमें शिक्षा देने के लिए, ये भी एक कारण है. तो यहां पर शिक्षा यही है कि चाहे कोई इतने ऊंचे पद पर भी आ जाए, परंतु यदि कोई केयरफुल नहीं है, यहां पर देवराज इंद्र के विषय में बताया गया था कि वो केयरफुल नहीं थे. ये सब कुछ जो उनको प्राप्त था, ये गुण, पद, ऐश्वर्य, अनुयायी, ये सब कुछ जो उनको प्राप्त था, तो वो केयरफुल नहीं थे. तो भगवान ये हम सबको सिखा रहे हैं इनके उदाहरण से कि यदि ये सब कुछ भी आ जाए. अब देखो, इंद्र तो खैर इनके पास इतना सब कुछ था तो हम सोच सकते हैं कि बहुत पॉसिबिलिटी थी कि अभिमानी होने का. अभी हमारे पास तो कुछ भी नहीं, फिर भी हम पंगा लेते रहते हैं भगवान से, आपकी भाषा में. हाँ, हमारे पास तो कुछ भी पद नहीं है, कोई गुण भी नहीं है, फिर भी हम सर ऊंचा कर छाती सीना ठोक कर अभिमान में घूमते फिरते हैं. तो ये नहीं कि वो जानते नहीं थे कि ये कौन है, परंतु अभिमान एक ऐसा नशा है कि जब वो चढ़ता है तो दूसरे को उतारता है. नशा चढ़ता है, व्यक्ति को नीचे उतारता है. तो जब वो नशा चढ़ता है तो व्यक्ति भूल जाता है फिर धीरे धीरे. तो यही तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भगवान बता रहे हैं कि उससे सावधान रहो. अभी कितनी बार हम देखते हैं कि भक्त भी वो सब कुछ जानते हैं, ये नहीं कि हम लोग जानते नहीं कि क्या सही क्या गलत है, वैष्णव अपराध क्या है, वैष्णव एटिकेट क्या है, सब कुछ सुने हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानने सुनने के बाद भी जानिया विषया जानिया सुनिया विष खाइनो, नरोत्तम दास ठाकुर बोलते कि जानते हुए जानते बूझते हुए भी कोई विष क्यों खाता है, वो उस समय प्रभावित हो जाता है उससे। तो हमें इसमें पूरी पूरी जो लीला है वो समझनी है कि आगे चलकर कैसे वो नम्र होकर उसने उन्होंने पश्चाताप किया, तो वो पूरी लीला हमको समझनी है, केवल इसमें ही नहीं अटक जाओ। कई लोग क्या होते हैं कि इससे प्रेरणा लेते हैं, अरे उनसे जमा नहीं तो फिर हम कैसे जमाएंगे। नहीं, आगे पूरी पढ़ो ना, पूरी लीला क्या है, आगे चलकर उन्होंने किया क्या, पूरे शरणागत जो हुए वो भी तो है। तो हाँ, उनको सब कुछ पता है, ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोहन लीला में वो भी एक ऐसी ही लीला है, विमोहित हुए कि वो भी सब कुछ जानते थे, फिर भी ये समझ लीजिए कि भगवान जब लीला करते हैं तो भगवान की लीला शक्ति यदि किसी को विमोहित करना चाहे तो चाहे कोई कितने भी बड़े पद पर हो, चाहे देवराज इंद्र हो या ब्रह्मा जी जैसे पद पर हो, भगवान अपनी लीला से विमोहित कर सकते हैं। तो इसमें भगवान का गुणगान हो रहा है, उनकी विमोहन शक्ति का गुणगान हो रहा है।
हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा ये सवाल ऐसा है, आज हम भक्तों के संग में आते हैं फिर भी अभिमान होता है, लेकिन जब हम हमारी दिनचर्या देखे, हमारे हमारा ऐसे लोगों से संपर्क होता है, वो इतनी अभिमान भरी बातें करते हैं कि वो ऐसा सोचते हैं कि मैंने जो किया है मेरे बलबूते पर किया है। कुछ हमारी जब चर्चा होती है कुछ लोगों के साथ, उसमें भगवान का कोई सहयोग नहीं। जब हम ऐसे लोगों के संपर्क में आते, हम सोचते हैं कि हमें ऐसे लोगों से बात भी नहीं करनी है, फिर भी हम उनके संपर्क में आते, तो उस समय पर हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें पुस्तक वाचन करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, लेकिन कलयुग का आप देखोगे बहुत सा समय हमारा ऐसे लोगों के साथ बीतता होता है। वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद दोज पीपल हु डोंट एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ गॉड। व्हाट टू डू दैट टाइम?
जैसे कभी आपने देखा होगा पुलिस स्टेशन या कोई पब्लिक प्लेस में कईयों के फोटो लगाए होते हैं, हाँ देखा आपने, चेहरे होते हैं बहुत सारे और क्या लिखा रहता है, इन लोगों से सावधान, सावध रहा, यांचा पासून सावध रहा। तो उसी प्रकार से भगवान आपके जीवन में, अगर आप प्रामाणिक हैं तो आपके जीवन में ऐसे लोगों को भगवान भेजेंगे, क्यों? ताकि आप वो गलती न करो जो वो लोग कर रहे हैं। देखकर उनको देखो, सीखो और सुधरो, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो सीखो और सुधरो। हम लोग तीसरा भूल जाते हैं और वो गलत हो जाता है, फिर हम लोग देखते हैं और फिर सीखते हैं लेकिन सुधरते नहीं, उल्टा सीखते हैं, बिगड़ते हैं। तो हाँ, अब आपका दृष्टिकोण है कि आप जब प्रहलाद महाराज जैसे महाजनों के विषय में पढ़ोगे, ऐसे नम्र भक्तों के विषय में पढ़ोगे, तो आप उनसे सीख सकते हो, देवराज इंद्र के अभिमान से सीख सकते हो। क्या सीख सकते हो? प्रहलाद महाराज से हम सीखते हैं कि क्या करना चाहिए, देवराज इंद्र से सीखते हैं क्या नहीं करना चाहिए। तो वैसे ही ये जो प्रश्न है कि आप जब बाहर भी आपको सब कैटेगरी के मिलेंगे, प्रहलाद महाराज के क्लब के मेंबर्स मिलेंगे, हिरण्यकश्यपु के क्लब के मेंबर्स मिलेंगे, आपके ऊपर है कि आप कौन सा क्लब ज्वाइन करते हो। इसलिए तीन चीज ध्यान में रखना, देखो सीखो और सुधरो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।